नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सारी अष्ट सखियां, पंचतत्व, गुरु पर अपने आप को केवल यही कह सकते दिवस पर हम सब
व्यक्तिगत रूप से श्रीमती राधारानी के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं उनके बर्थडे पार्टी पर अटेंड करने के लिए। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो चुनिंदा लोगों को इनविटेशन देता है ना, तो उसी प्रकार से हालांकि आप पूछ रहे होंगे कि मैंने तो कोई इनविटेशन कार्ड पाया नहीं, किसने भेजा, आप बोल रहे हो राधा रानी ने। हमारे अंदर यदि इतनी सी भी इच्छा हुई आज कि मैं श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाने जाने वाला हूं, वो इच्छा ही श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और विशेष रूप से ये जो सीजन चल रहा है महाराष्ट्र में, हम सब जानते हैं इस सीजन में श्रीमती राधा रानी के राधाष्टमी महोत्सव पर हम उपस्थित हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और उपस्थित होने के साथ साथ जो हम प्रयास करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी के गूढ़ अस्तित्व को जानने का, आज वो हमारा प्रयास उसी प्रकार से है जैसे कोई प्रशांत महासागर के तट पर एक मेंढक बैठा है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा सागर, तो प्रशांत महासागर के तट पर कोई मेंढक बैठा है। तो ध्यान से सुनिए, श्रीमती राधा रानी की महिमा वो प्रशांत महासागर है और मैं एक मेंढक, और मैं प्रयास कर रहा हूं इस प्रशांत महासागर को लांघने का, संभव है हां या ना? हां भी और ना भी, स्वयं के प्रयास से इस मेंढक के अंदर कोई गुण नहीं, केवल टर्टर कर सकता है यह मेंढक और कुछ नहीं। परंतु श्रीमती राधारानी की कृपा से श्रीमती राधारानी इस मेंढक को पंख लगा सकती है और यह पंख न लगाए तो उस समुद्र को एक बूंद में परिणित कर कर दे सकती है। यह श्रीमती राधारानी की महिमा है। तो आज सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज का ये त्यौहार सभी त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण है। जितने सारे हमारे वैष्णव त्योहार हैं वैष्णव कैलेंडर में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये आज का त्योहार राधाष्टमी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेशु, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक विरला होता है जो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जान पाता है। सबसे पहले तो 84 लाख योनियों में मनुष्य ही कितने विरले हैं, उनमें से जो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जाने वो और भी दुर्लभ। परंतु भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के द्वारा बहुत ही कम उसमें से जान पाते हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा, श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है, या भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी का क्या महत्व है, हम सब तो छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को किस प्रकार का पथ दिए हैं, ये केवल जान पाना ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। इसलिए आज का यह त्योहार हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तक कि श्रील प्रभुपाद के श्री गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये भगवान श्री कृष्ण कौन है हम नहीं जानते। यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर हमसे कहें कि मैं ये हूं मैं वो हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मैं नहीं पहचानता ये कौन है। परंतु श्रीमती राधा रानी, यदि श्रीमती राधा रानी कहती है कि ये भगवान श्री कृष्ण ये मेरे प्राणेश्वर हैं या मेरा कुछ संबंध है कृष्ण से, ये श्याम सुंदर से, बस राधा रानी ने केवल इतना कह दिया कि मेरा कुछ संबंध इस कृष्ण से है, तो हम भी फिर सोचेंगे। हालांकि बहुत ऊंचा भाव है, हम केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाव व्यक्त कर रहे हैं। हम यहां पर जूझ रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने में, परंतु एक है अनर्थ निवृत्ति और एक है अर्थ प्रवृत्ति। तो ये श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना, इसे कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति। और हम जो अपनी साधना में लगते हैं रोज 16 माला मंगल आरती श्रवण कीर्तन महाप्रसाद जो कुछ, वो सब वो हमारा प्रयास है और अनर्थ निवृत्ति का प्रयास अर्थ प्रवृत्ति तक पहुंचने के लिए। तो हालांकि श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान कहां से शुरू करें, कहां ले चलें और कहां अंत करें, कोई इसका ठिकाना नहीं। परंतु फिर भी हम महाजनों के पद चिन्हों पर चलेंगे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का किस प्रकार से गुणगान किया है, उसे यदि हम देखें तो दशम स्कंद में ये बहुत ही सुंदर श्लोक, ये एक ही श्लोक पूरे श्रीमद् भागवत में है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के नाम का उल्लेख कर रहे हैं, वो भी छन्न तरीके से, कवर्ड इन अ कवर्ड वे, छन्न तरीके से। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए ये सुंदर श्लोक, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयामनयद्रः अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयामनयद्रः अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयामनयद्रः। ये प्रसंग है रासलीला का, जब भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधारानी के साथ अकेले रास मंडल में विचरण करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी यहां पर बहुत ही संभाल कर इस प्रसंग को परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने भी जब सुखदेव गोस्वामी को देखा कि सुखदेव गोस्वामी अचानक इस प्रसंग को सुनाते हुए थोड़ा सा विचलित क्यों हो रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रवक्ता वो अपने प्रवचन में विचलित होना ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो वो विचलित क्यों हो रहे थे, क्योंकि यहां पर श्रीमती राधा रानी का नाम उन्हें उच्चारण करना है इस प्रसंग को सुनाने के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी गोपी के साथ अलग गए जो कि बहुत ही विशेष गोपी थी। तो मानो परीक्षित महाराज पूछ लें कि भाई ऐसी कौन सी गोपी है जो इतनी विशेष है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपियों को छोड़ दिए और उस एक गोपी के साथ, वो भी रासलीला के मध्य में। तो सुखदेव गोस्वामी वो थोड़ा डर रहे थे कि परीक्षित यदि पूछ लेगा तो मैं कैसे राधा रानी का नाम अपने जिह्वा से उच्चारण कर पाऊंगा। अब हमने सुबह से लेके अब तक कितनी बार राधे 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 राधा रानी कितनी बार बोल दिया, कुछ हुआ? जैसे मैं लंदन में था, वहां पर एक गृहस्थ, उनकी छोटी लड़की का नाम है राधा रानी, तो छोटी सी तोतली भाषा बोलती, तो मैंने पूछा, मुझे पता नहीं था उसका नाम पहले, तो मैंने पूछा क्या नाम है लाली, तो उसने अपने तोतली भाषा में कहा आदा आनी। तो मैंने कहा ये तो बहुत विशेष नाम लगता है, क्या मतलब हुआ उसका, आप मतलब नहीं जानते आधा आनी। तो मैंने कहा मैं आधा तो समझा, ये आधा और आनी क्या होता है? तो फिर पिताजी आए, नहीं 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 राधा रानी। गोपी श्रीमती राधा अन्य आराधितो हमारे केवल इतना ही शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वो एक विशेष गोपी जो कि भगवान श्री गोविंद को आनंद देने वाली है। अब भगवान का ये जो नाम है गोविंद, इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति जो हम सब की इंद्रियों को आनंद दे। हमारे इंद्रियों को कहा गया है गोविंद, वो हैं जो हमारी इंद्रियों को आनंद दे। हम चाहे कितना भी प्रयास करें इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों को आनंद देने का, परंतु केवल एक गोविंद ही हैं जो हमारी इंद्रियों को आनंद दे सकते हैं। तो वो क्यों हमारी इंद्रियों को आनंद दे सकते हैं? क्योंकि वो आनंद घन है, वो रसो वही सह, पूरा जो आनंद का स्टॉक है वो केवल गोविंद के पास, मोनोपोली उनका केवल और किसी का नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति अपना नाम रख ले आनंद, परमानंद, देवानंद, जो भी नाम रख ले, परंतु आनंद के एकमेव स्रोत हैं श्री गोविंद। और यदि पूछा जाए कि ये श्री गोविंद करते क्या हैं, क्या इनका जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए, तो श्री गोविंद करते क्या हैं? आनंद लूटते हैं, आनंद देते हैं, बस यही काम है। सिंपली एंजॉयिंग, इंग्लिश में यदि बोलें, बस यही काम है इनका। अब ये गोविंद कोई है ऐसा कि ये गोविंद को आनंद दे रहा है हमारे गोविंदानंद प्रभु को छोड़ के? श्रीमती राधारानी का ये नाम यहां पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, गोविंद आनंदनी, जो गोविंद को आनंद, वो गोविंद जो हमको आनंद दे रहे हैं, उन गोविंद को आनंद देने वाली हैं ये अन्य आराधित गोपी श्रीमती राधा रानी। तो तीन कारण बताए हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्टली राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया। सबसे पहला कारण, सुखदेव गोस्वामी वो यदि राधा रानी का नाम उच्चारण कर लेते तो वो ऐसी भाव विभोर अवस्था में चले जाते कि आगे की कथा परीक्षित महाराज सुन नहीं पाते। ये तो दशम स्कंद और ग्यारहवां स्कंद, बारहवां स्कंद बाकी, तो और कुछ वो बोल नहीं पाते, कुछ भी उच्चारण नहीं हो पाता उनके जिह्वा से यदि वो राधा रानी का नाम ले लेते थे डायरेक्टली। और दूसरा कारण ये बताया कि वहां पर अन्य बहुत से और श्रोता में बैठे हुए थे जो उस स्तर पर नहीं थे कि वो राधा रानी के नाम को सुन भी सके। देखिए वहां पर कौन कौन बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज पूरे ब्रह्मांड के, अत्रेय मुनि, अष्टवक्र मुनि, व्यासदेव, नारद मुनि, ये सारे दिग्गज बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी और भी, हालांकि ये सब तो योग्य थे, परंतु और कई थे जो योग्य नहीं थे श्रीमती राधा रानी की महिमा या उनके नाम को भी सुनने के। और तीसरा कारण, सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि श्रीमती राधा रानी का ये जो नाम है इतना बहुमूल्य है कि इसे जितना छिपा कर रखा जाए उतना उसकी महिमा बढ़ती है। जैसे आप जाओ किसी जौहरी के पास, त्रिभुवनदास भीम जी या टकले बंधु, आज हमारे कुछ ब्रह्मचारी टकले बंधु ज्वाइन किए, आज शेविंग किया उन्होंने, तो वहां पर जो कोई कीमती हीरा होगा, वो कीमती हीरे को आप देखिए, वो सब यदि वहां पे रखते हैं हम उस हीरे की पहचान उसके थ्रू जानते हैं कितना सिक्योरिटी लगा है। तो सुखदेव गोस्वामी ये देख रहे हैं हमारी दशा कि हम राधा रानी के नाम का जो बहुमूल्य अर्थ है वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसे इतना सिक्योरिटी लगा दो, तब फिर लोगों को लगेगा बहुत बहुमूल्य नाम है, तब हमें थोड़ा कोई थोड़ी सी थोड़ा भान होता है कि राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं कि भगवान जो हरि हैं, जो ईश्वर हैं, जो गोविंद हैं, वो भगवान को पूर्णतया सेवा करने वाली, संतुष्ट करने वाली एकमेव हैं श्रीमती राधा रानी, उनकी आराधना से। और यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है तो सीखना चाहिए श्रीमती राधा रानी से। राधा रानी का जन्म हुआ अनुराधा नक्षत्र में, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कौन से नक्षत्र में? भक्ति शास्त्री का एक टेस्ट है, कौन से नक्षत्र में? रोहिणी। हाँ, रोहिणी नक्षत्र। तो आप शर्मा क्यों रहे हैं इतना, अभी फेल नहीं होने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए और श्रीमती राधा रानी अनुराधा नक्षत्र में, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दोनों नक्षत्र विपरीत हैं। और यदि जब किसी के विवाह का नक्षत्र देखा जाता है तो यदि पति का नक्षत्र रोहिणी हो और पत्नी का नक्षत्र अनुराधा हो तो वो सबसे योग्य नक्षत्र है दोनों के लिए विवाह करने के लिए ज्योतिष के अनुसार। जैसे वो होता ना लौह चुंबक, लौह चुंबक में क्या देखा जाता है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो श्रीमती राधा रानी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए तो मैं अनुराधा नक्षत्र में पैदा होती हूं जो कि रोहिणी के विपरीत है। भगवान श्री कृष्ण कौन से पक्ष में पैदा हुए, कितने पक्ष होते हैं? दो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो भगवान श्री कृष्ण ये कृष्ण पक्ष में पैदा हुए और श्रीमती राधा रानी शुक्ल पक्ष में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो सांवले हैं, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है सांवला। तो भगवान सांवले हैं, भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए और श्रीमती राधा रानी है गौरांगी, उजले वर्ण की भानुप्रिया अर्थात सूर्य की पुत्री, इसलिए बहुत तेजस्वी दैदीप्यमान है उनकी कांति, इसलिए वो शुक्ल पक्ष में पैदा हुई। अर्थात ये समझना होगा कि क्योंकि श्रीमती राधा रानी जिस भी पक्ष में पैदा हुई उस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा गया। ये नहीं कि शुक्ल पक्ष पहले से था और श्रीमती राधा रानी ने वो शुक्ल पक्ष अपनाया, श्रीमती राधा रानी के तेज के वजह से वो दैदीप्यमान हुआ पक्ष। तो राधा और कृष्ण ये दोनों जब पैदा ही हुए, जन्माष्टमी और राधाष्टमी का महत्व हमारे लिए क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि कृष्ण पक्ष में पैदा हुए, तो हमारे जितने सारे अनर्थ हैं, पाप हैं, उन सब को अपने सांवलेपन में ढकने के लिए, ताकि ये जो हमारे अनर्थ हैं वो उठकर दिखे ना। और हमारे अंदर यदि इतना सा भी गुण है, कण मात्र भी यदि गुण है हमारे अंदर कि हमने केवल आज इच्छा की कि चलो जाकर देखते हैं ये हरे कृष्णा मंदिर में ये लोग क्या कर रहे हैं आज, राधा रानी के ये राधा रानी है कौन, इतनी सी भी इच्छा किसी की हो गई, यदि रा भी बोल दिया किसी ने, तो श्रीमती राधा रानी का ये जो शुक्ल वर्ण है, दैदीप्यमान तेजस्वी वर्ण है, वो उस कण मात्र इच्छा को उभार कर दिखाता है। जैसे स्पॉटलाइट या टॉर्च होता है ना, जैसे डॉक्टर वो कहता है मुंह खोलो, टॉर्च से अंदर देखता है, तो टॉर्च क्या करता है, अंदर वो डॉक्टर को और साफ तरीके से दिखाता है अपनी रोशनी से। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी वो हमारे थोड़े से भी गुण को बहुत साफ तरीके से भगवान श्री कृष्ण को दिखाती है कि इसमें और कोई गुण नहीं, देखो एक गुण है इसके अंदर, ये मनुष्य है, वो भी बहुत बड़ा गुण है, हम मनुष्य योनि में हैं, बहुत बड़ा गुण है ये, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद ये मनुष्य देह मिलता है। हम तो भारत में परेशान हैं इतने सारे मनुष्य देह को देख देख कर, परंतु ये बहुत दुर्लभ है। तो यदि इतना सा भी कोई गुण हो कि हमें मनुष्य देह मिला है, तो श्रीमती राधा रानी उस पर टॉर्च मारकर कृष्ण को दिखाती है, कृष्ण देखो इसमें ये गुण है तो इसको रिजेक्ट मत करो। तो इस प्रकार से इनके जन्म के विषय में बताया गया है, अनुराधा और रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। परंतु फिर भी राधाष्टमी का महत्व, राधाष्टमी का महत्व इतना है, पद्म पुराण की एक कथा है कि एक जगह पर ब्रजमंडल में राधाष्टमी मनाई जा रही थी, जैसे आज का जो दिन, तो राधाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था, और वहां से एक महिला गुजर रही थी रास्ते से, उस महिला का नाम था लीलावती, हालांकि नाम उसका बहुत अच्छा था परंतु उसके कर्म कुछ इतने अच्छे नहीं थे। ये लीलावती एक वैश्या थी, तो ये रास्ते से जा रही थी और उसने देखा कि जैसे मान लो हमारा ये जो रास्ता है मंदिर के बाहर का, वहां से कोई गुजर रहा हो और देखे कि बहुत से लोग यहां पर एकत्रित हैं, तो चलो जाके देखें क्या हो रहा है। हालांकि आजकल तो भीड़ देख के लोग नहीं आ रहे, परंतु यदि कोई जिज्ञासा करे तो वो लीलावती जो वैश्या थी उसने जिज्ञासा की कि ये क्या हो रहा है, कौन इतने ये लोग एकत्रित हुए हैं। तो जाई वो वैश्या गई लीलावती और जाकर एक किसी से पूछा कि क्या हो रहा है यहां पर, तो लीलावती को बताया गया कि अरे पता नहीं आज राधाष्टमी है, आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। तो ये लीलावती कुछ नहीं जानती थी कौन है राधा रानी, राधाष्टमी क्या होता है। तो संक्षिप्त रूप में लीलावती को बताया गया तो लीलावती केवल ये नाम सुनकर इतना प्रभावित हुई कि लीलावती पूछती है क्या मैं इनके आविर्भाव दिवस पर कुछ अर्पित कर सकती हूं। तो कहा गया अवश्य करना ही चाहिए। तो इस लीलावती ने, इसके पास कुछ चंदन था, हालांकि वो चंदन वो राधारानी के लिए नहीं निकाली थी, स्वयं के लिए। तो उसके पास कुछ चंदन था तो चंदन अर्पित कर दिया श्रीमती राधारानी के विग्रह को और बस चली गई। ऐसा नहीं कि वहां पर वो प्रवचन सुनी, फीस्ट खाई, अभिषेक रूप से नहीं दे दिया। को और लीलावती के सूक्ष्म शरीर को यमलोक ले जाने के लिए तैयार और यमपाश में फांस कर लीलावती के आत्मा को ले जा रहे हैं यमलोक। तो बीच में एक सुनहरा विमान यमदूतों के सामने उतरता है और उस विमान में बैठे हुए बहुत तेजस्वी व्यक्ति उतरते हैं और यमदूत उनको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। मानो यमदूत सोच रहे हो कि अरे हम जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं, ये अजामिल के टाइम भी ऐसा ही हुआ। तो वो तेजस्वी व्यक्ति उस सुनहरे विमान से उतरे और उन्होंने उस लीलावती के आत्मा और सूक्ष्म शरीर को उस सुनहरे विमान में बिठाया और यमदूत केवल देखते रहे, ये कौन थे, ये कहां से आए, ये क्यों आए और ये कहां ले जा रहे हैं इस लीलावती को। वो सुनहरा विमान भेजा था श्रीमती राधा रानी ने। देखिए श्रीमती राधा रानी जो कि निमग्न है 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत नहीं रहती। वो श्रीमती राधा रानी, ये वैश्या जिसने अपने जीवन में केवल एक बार कभी तो किसी राधाष्टमी में थोड़ा सा चंदन अर्पित किया किसी के द्वारा, उसे याद रखा। कब तक? जब तक कि उसने अपना देह त्याग नहीं किया। और उसके अंतराल में ये लीलावती कुकर्म में लगी थी परंतु श्रीमती राधा रानी ने वो टॉर्च मारा कहां पर? उसके एक गुण पर। इसने वो चंदन जो अर्पित किया और उसके वजह से इस लीलावती को भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो यहां से शुरुआत होती है राधाष्टमी इस महोत्सव की महिमा, क्या महत्व है। परंतु हम फिर भी जानना चाहेंगे कि श्रीमती राधा रानी के जन्म की महिमा क्या है। बहुत ही सुंदर इसकी भी कथा है कि जब पार्वती देवी वो हिमालय की पुत्री बनकर आई, हिम की पुत्री बनकर आई पार्वती देवी, तो पार्वती देवी का विवाह हुआ शिवजी से। तो हिमालय ये पिता पार्वती के बहुत गर्वित हुए कि अरे मेरी पुत्री देखो पार्वती है और जमाई देखो कौन है, महादेव। जमाई राजा है महादेव, तो जो उनका समुदाय था किनका, पर्वतों का समुदाय। पर्वतों के समुदाय में एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्या, सुना होगा आपने विंध्याचल। तो विंध्या पर्वत के मन में विचार आया कि मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जो पार्वती से भी अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए, और ऐसा दामाद जो महादेव को हरा दे। तो ऐसा कौन हो सकता है? तो उन्होंने बहुत तपस्या की, करोड़ों जन्मों तक तपस्या। उसके पश्चात ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को हर समय जाते रहना पड़ता है, इस प्रकार की तपस्या कोई करता रहता है, कई बार वो थोड़ा डर डर के जाते हैं, परंतु यहाँ पे देखे कि ये पर्वत है, कोई ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं मांगेगा। तो ब्रह्मा जी पहुंचे तो विंध्या पर्वत ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जो कि पार्वती से भी अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए, और ऐसा जमाई जो कि महादेव को हरा सके। तो ब्रह्मा जी ने उस समय शायद थोड़े घाई में रहे होंगे तो कहा तथास्तु, बोल के चले गए। और फिर ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि भाई ऐसा कौन है, मैंने तथास्तु तो बोल दिया, एक ही है कृष्ण जो महादेव जी को हरा सकते हैं, और एक ही है जो पार्वती से भी ऊंचे गुणों वाली, और वो है श्रीमती राधा रानी। तो ब्रह्मा जी अब सोचे कि मेरे रेपुटेशन का सवाल है कि यदि ये वरदान पूरा नहीं होगा तो मार्केट में नाम खराब होगा। तो ब्रह्मा जी वो तपस्या में लगे अब, और श्रीमती राधा रानी को उन्होंने आह्वान किया। तो श्रीमती राधा रानी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई, और श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप फिर से क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने पूरा प्रस्ताव सामने रखा राधा रानी के कि ऐसा ऐसा मैंने वरदान तो दे दिया। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा ठीक है, तुम्हारा मान रखने के लिए मैं विंध्या पर्वत की पुत्री के रूप में आऊंगी। तो श्रीमती राधा रानी, हालांकि वो कीर्तिदा नंदिनी है और वृषभानु नंदिनी है, अर्थात वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री हैं, परंतु वो तो नित्य रूप से है, ये श्रीमती राधा रानी के नित्य माता पिता है, जैसे नंद यशोदा नित्य माता पिता है कृष्ण के, तो श्रीमती राधा रानी के नित्य माता पिता है वृषभानु और कीर्तिदा। परंतु श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार का प्रयोजन किया कि साथ साथ विंध्या पर्वत की जो पत्नी मिसेज विंध्या, नाम तो नहीं बताया गया, तो उनके भी गर्भ में श्रीमती राधा रानी और उनके एक विस्तारित अंश, ये दोनों अवतरित हुए उनके गर्भ में, विंध्या पर्वत की पत्नी। तो वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा के गर्भ में राधा रानी, और वृषभानु के भाई जिनका नाम चंद्रभानु, चंद्रभानु की पत्नी उनके गर्भ में एक और बालिका थी। तो श्रीमती राधा रानी और ये दूसरी बालिका, ये दोनों विंध्या पर्वत की पुत्री बनने के लिए तैयार हो गए। और उस समय भगवान कृष्ण जन्म चुके थे, और कंस के कारागृह में कंस ने जो योग माया को मारने का प्रयास किया, जो पुत्री, हम सब ये कथा जानते हैं, वसुदेव वो बालिका को लेकर आए नंद महाराज के गोकुल से, और कंस ने सोचा कि ये तो आठवां पुत्र नहीं पुत्री है, परंतु इसे भी मैं मारूंगा। तो वो पुत्री योग माया थी, स्वयं दुर्गा देवी, और वो प्रकट हुई, और कंस को दुर्गा देवी योग माया ने कहा कि कंस तुम कौन सी दुनिया में हो, तुम मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे हो, मैं जो तुम्हारी अधिष्ठात्रा देवी हूं, कंस दुर्गा उपासक था। तो कंस तो भयभीत हो गया दुर्गा देवी को देखकर कि मैं दुर्गा देवी को मारने का प्रयास कर रहा था। तो योग माया ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका, अब भूल जाओ कि तुम जियोगे, कैंसिल करो तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस। तो तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है, और मैं जो योग माया शक्ति हूं, मेरी जो स्रोत हैं वो भी पैदा हो चुकी है श्रीमती राधा रानी। इसका उल्लेख भागवत में नहीं किया गया कि योग माया ने श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में भी बताया कंस को, और ये कहा कि आठ शक्तियां अर्थात अष्ट सखी, आठ शक्तियां पैदा हुई हैं, और ये आठ शक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं कि यदि कोई भी इनकी शरण ग्रहण करता है तो उसका जीवन निस्तार हो जाएगा। और उन आठ शक्तियों में से दो प्रमुख हैं, चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी, और उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति आदि शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी की। तो कंस को यह पूरा समाचार दिया कृष्ण के जन्म के विषय में, राधा रानी चंद्रावली अष्ट सखी सब के विषय में कि पूरी पार्टी जन्मी है। उस समय कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि जितने सारे बालक हैं पैदा हुए उन सबको तो तुम मारो, परंतु जो बालिकाएं पैदा हुई हैं, लालियां, जो बालिकाएं पैदा हुई हैं उनको मारना मत, उनको मेरे पास लेके आओ, क्योंकि वो दुर्गा देवी के आदिशक्ति हैं। इसलिए कंस डर रहा था, उनको मारना मत। तो पूतना को ये निर्देश आदेश दे दिया कि बालकों को तो, लड़कों को तो मार देना, परंतु जो छोटी छोटी लड़कियां पैदा हुई उनको मत मारना, उनको मेरे पास लेके आना। तो पूतना वो अब ये दक्षिण भारत में विंध्या पर्वत, और विंध्या पर्वत की पत्नी ने दो पुत्रियों को जन्म दिया, चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी। तो पूतना वहां से आ रही थी, दक्षिण भारत से ऊपर आ रही थी गोकुल। तो रास्ते में पूतना ने इन दो सुंदर बालिकाओं को देखा तो इतना पूतना प्रभावित हुई, तो पूतना ने सोचा ये दोनों को कंस को मैं भेंट के रूप में देती हूं। पूतना भी प्रभावित हो गई राधा रानी के सौंदर्य को देखकर इतना। तो राधा रानी को और चंद्रावली को उठा लिया पूतना ने और पूतना उड़ पड़ी। अब विंध्या पर्वत इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी को बुलाया, सारा वरदान मिला, और ये कौन है? तो विंध्या पर्वत ने तुरंत सब ब्राह्मणों को फोन लगाया, उनको बुलाया और सब ब्राह्मणों को कहा कि तुरंत मंत्रोच्चारण शुरू करो, ये पूतना को रोको। वो तो जानते नहीं थे ये पूतना, ये जो भी है उसको रोको, ये खेचरी को। तो वो ब्राह्मण अपने मंत्र उच्चारण करने लगे और उनके मंत्र उच्चारण में इतनी शक्ति कि वो पूतना अचानक कुछ तो होने लगा, ओ मेरी सारी शक्तियां कहां जा रही, मैं क्यों नहीं उठा पा रही इन दोनों को। तो उनमें से एक वो विदर्भ नगर में पूतना को छोड़ना पड़ा, जो कि भीष्मक राजा उन्होंने उन्हें लिया, और फिर गोकुल महावन से जांबवान नामक ब्रजवासी वो गए और उन्होंने 5 दिन पश्चात भीष्मक जो कि ये पुत्री को लिए थे वहां से लेके आए, और ये आगे चलकर चंद्रावली बनी। और जब पूतना मथुरा गोकुल तक वहां पहुंची तो रावल क्षेत्र में जहां पर कीर्तिदा और वृषभानु थे, राधा रानी का ये पूरा अरेंजमेंट था कि पूतना वहां तक लाए और फिर वो ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण का असर वहां पड़ा पूतना को, और वहां पूतना ने छोड़ा और पूतना फिर आगे समझ नहीं पाई कि अचानक मेरी सारी शक्ति क्षीण कैसे हो गई। और उस जगह रावल में श्रीमती राधा रानी फिर से कीर्तिदा के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया और फिर कीर्तिदा नंदिनी बनी वो। तो विंध्या पर्वत को जो चाहिए था वो भी कुछ समय के लिए दे दिया कि हाँ तुम्हारी भी पुत्री मैं हूं साइमल्टेनियसली। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार ये कारण के वजह से किया क्योंकि पूतना ने श्रीमती राधा रानी का संग किया था। तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो बहुत चतुर निकली पूतना, पहले से ही जैक लगाकर आई, इन्फ्लुएंस लगाकर आई श्रीमती राधा रानी का। तो उनके जन्म की ये कथा बताई गई है कि कैसे श्रीमती राधा रानी अपने जन्म से ही इतनी कृपालु कि यदि कोई पर्वत भी उन्हें पुत्री के रूप में मांग रहा था तो उनके पुत्री के रूप में आकर उन्हें संतुष्ट किया, पूतना को अपना संग दिया जो कि आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण को मारने जाने वाली थी, और ये पूतना जो कंस को श्रीमती राधा रानी को देने वाली थी इस पूतना का भी उद्धार करवाया श्रीमती राधा रानी ने। तो ये जन्म की संक्षिप्त रूप में श्रीमती राधा रानी की कथा है, हालांकि और भी बहुत सी कथाएं हैं उनके जन्म की, परंतु इस कथा से और श्रीमती राधा रानी के राधाष्टमी के इस महोत्सव के महत्व में ये जानना आवश्यक है कि श्रीमती राधा रानी को एक पद मिला है सेवा स्वरूपिणी। जैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो श्रीमती राधा रानी है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटरहुड और सर्विटर गॉडहेड, कि इनसे ज्यादा इनसे बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ न कोई हो सकेगा। तो सेवा स्वरूपिणी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी जब श्रीमती राधा रानी का परिचय दिया तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का परिचय किस प्रकार से दिया, आराधितो, जो आराधना में सेवा में लगी है, यह परिचय दिया श्रीमती राधा रानी का। तो श्रीमती राधा रानी का यह एकमेव परिचय है कि वो हर समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। इसलिए एक भगवान श्री कृष्ण की सेविका होने के नाते या जो भी सेवक भगवान का होता है उसके क्या विचार होते हैं, एक सुंदर श्लोक में बताया गया है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दासक कोरे वेतन मोरे देहो प्रेम धन। एक सेवक भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि भगवान मैं आपकी नौकरी पे लगा हूं, एक सेवक भगवान को बोल रहा है कि मैं आपकी नौकरी करता हूं, आप मेरे मालिक, मैं आपका सेवक, तो मुझे वेतन चाहिए, वेतन। तो एक सेवक शुद्ध भक्त भगवान की जो नौकरी करता है 24 घंटे भगवान से क्या वेतन मांगता है। बहुत सुंदर श्लोक में कहा गया है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये धन यदि मुझे वेतन के रूप में नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन दरिद्र। दासकोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन, ये जो मैं आपकी नौकरी कर रहा हूं उसके बदले में मुझे वेतन केवल एक ही चाहिए, कृष्ण प्रेम धन, आपका प्रेम धन चाहिए। अब कौन है सेवक इस भौतिक संसार का जो अपने मालिक को इस प्रकार से कहेगा, कि मैं आपके रिलायंस कंपनी में काम करता हूं और मुझे केवल एक ही वेतन चाहिए मिस्टर अंबानी। कौन सा वेतन? आपके प्रति प्रेम। सोचिए, कोई है ऐसा सेवक जो इस प्रकार का वेतन मांगे, और कोई है ऐसा मालिक जो इस प्रकार का वेतन दे सके? इसलिए सेवा स्वरूपिणी श्रीमती राधारानी के विषय में कहा गया है कि श्रीमती राधारानी की जो सेवा है वो अहैतु की अप्रतिहता सेवा है, और एक ही वेतन श्रीमती राधारानी हर क्षण लेती रहती है, वो है कृष्ण प्रेम धन। उसकी वृद्धि होती रहती है। वो जो उनका बैंक अकाउंट है, कृष्ण प्रेम धन बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ कृष्ण प्रेम धन, उसके अंदर ये कृष्ण प्रेम का जो धन है वो हर समय प्रचुर मात्रा में। परंतु इस भौतिक संसार में जो तथाकथित अपना प्रेम दिखाते हैं, वो प्रेम पूरा वेतन से, भौतिक संसार का जो वेतन है वो वेतन से आच्छादित रहता है। जैसे आप, कोई व्यक्ति किसी होटल में जाता है तो वहां पर देखो, बाहर दरवाजा खोलने के लिए कितना प्रेम दिखा रहा है। आप दरवाजा मत खोलिए, मैं खोलता हूं दरवाजा। वो पगड़ी वगड़ी बांधे, दिन रात पसीना पसीना हुए, कौन रहा है? हम। भी जानते हैं कि इनको वेतन मिलता है रोने के लिए, और कई बार होता क्या है कि ये रुदालियां आती हैं और इन पता है कि यहां पे कोई मरा है, तो वहां के नाम वगैरह पूछ लेती हैं पहले, क्योंकि नाम के साथ रोना उसमें ज्यादा असर पड़ता है। नहीं तो ऐसे ही, अरे क्या हुआ, चले गए छोड़ के, अरे मुझे छोड़ दिया, क्या कैसे मैं जीऊंगी, वो परिवार के तो ओर से वो रोती हैं ऐसे, तो कई बार वो नाम पूछ लेती हैं। परंतु कई बार होता क्या है कि कोई मरा है, गए। फिर कान में आके कोई बोलता है, वो हिम्मत लाल नहीं थे, वो पोपट लाल। पोपट लाल हिम्मत लाल के बारे में कल रोई थी, ध्यान में था कि कल जो हिम्मत लाल मरे थे तो हिम्मत लाल छोटे लाल जो भी। और फिर कोई कान में आके बोलता है, अरे पोपट लाल, हाँ पोपट लाल। तो ये जो तथाकथित प्रेम या जो भी भावनाएं, वेतन, केवल वेतन वो सामने दिखता है। परंतु यहां पर श्रीमती राधा रानी जैसी जो सेविका हैं उनके विषय में कहा गया है, सेवा स्वरूपिणी, दास मोरे वेतन देहो प्रेम धन, कि मुझे इस प्रकार का प्रेम धन आप दीजिए। तो ये इनके जन्म से हम सीखते हैं, क्योंकि राधा रानी जब जन्मी तो जन्मते ही राधा रानी जो सुतिका गृह में, राधा रानी आंखें खोली नहीं, कुछ मुंह से रोई नहीं, और ऐसा लग रहा था कि बधिर है, मूक है, अंधी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखता नहीं और कुछ बोल नहीं पाती। और वृषभानु ये दोनों बहुत चिंतित थे। तो जैसे ये समाचार नंद और यशोदा को मिला, नंद यशोदा और वृषभानु और कीर्तिदा, बहुत घनिष्ठ संबंध था इनका, तो नंद और यशोदा गए देखने के लिए कि ये कौन सुंदर बालिका पैदा हुई है। तो वो लेके गए किसको? छोटे से कृष्ण को लेके गए। तो छोटे से कृष्ण वहां पर फुदकते हुए खेलते हुए वो अंदर गए, और वो सब तो कृष्ण, उनका तो एक ही प्रयोजन था, राधा रानी का दर्शन करना। तो वहां पर नंद यशोदा कृष्ण के साथ पहुंचते हैं और कीर्तिदा माता यशोदा को कहती है कि पता नहीं ये बालिका दिखने में इतनी सुंदर है परंतु अंधी पैदा हुई है, हमारा दुर्भाग्य, और इसे कुछ सुनता भी नहीं और कुछ बोलती भी नहीं। तो वो अलग कमरे में बैठकर ये सब चर्चा कर रहे थे, वृषभानु और नंद महाराज और यशोदा और कीर्तिदा माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते गए जहां पर राधा रानी पालने में लेटी हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमल से राधा रानी की आंखों को स्पर्श किया। जैसे ही आंखों को स्पर्श किया, राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और सामने भगवान श्री कृष्ण का मुख चंद्र देखा। श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को गोलोक वृंदावन में बोल दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि अटैची पैक करो, हमको नीचे जाना है भौम वृंदावन में, तो राधा रानी ने कहा, नहीं, मैं गोलोक वृंदावन नहीं छोड़ने वाली। तो भगवान कहे, अरे भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, ड्यूटी है, और मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूं, और तुम मेरे बिना यहां कैसे रह सकती हो। तो राधा रानी ने शर्त रखी कि मैं जाऊंगी इस शर्त पर कि हर समय तुम्हारा मुखमंडल सामने होना चाहिए, पैदा होते मैं आंख नहीं खोलूंगी, जिंदगी भर आंख नहीं खोलूंगी यदि तुम्हारा मुखमंडल सामने न आए तो। तो श्रीमती राधा रानी अपने जन्म से क्या सिखा रही है कि ये आंखों को किसकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। ये आंखें यदि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करती तो इन आंखों को कहा गया है ये आंखें असती हैं, वैश्या है। जैसे वैश्या किसी एक पुरुष के साथ संग नहीं करती ना, तो ये आंखें यदि जो इस भौतिक संसार की विषय वस्तुओं को देखने में इतने प्रलोभित रहती है वो आंखें उस वैश्या के समान है। तो श्रीमती राधा रानी हमें अपने जन्म से सिखा रही हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि यदि ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, ये जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इनको भगवान श्री कृष्ण जब तक स्पर्श नहीं करते, जब तक हमारी इंद्रियां उनको स्पर्श नहीं करती, तब तक ये शरीर ये मृत है। और राधा रानी इससे ये दिखा रही हैं कि यदि ये आंख भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को, उनके सुंदर छवि को, विग्रह को नहीं देख सके तो अंधा होना अच्छा। उसके बदले यदि कोई अंधा हो जाए तो वो भला, लेकिन यदि इन आंखों को गलत चीजों को देखने में लगाया तो दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति की आंखों का और उसके इंद्रियों का। तो श्रीमती राधा रानी अपने जन्म से आज राधाष्टमी के महोत्सव पे हमें सिखा रही है कि हमारी इंद्रियों को कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये एक बहुत ही विशेष गुण श्रीमती राधा रानी का, श्री कृष्ण परायणी, श्री कृष्ण परायण। श्री कृष्ण परायण किसे कहते हैं? वो सेवक जो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी को शरणागत नहीं, कोई इस सृष्टि का नहीं जो योग्य है उस व्यक्ति के शरणागति को प्राप्त करने के। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में जो अंतिम शिक्षा दिए, आश्लेषवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये प्रार्थना श्रीमती राधा रानी ने गाई है। श्रीमती राधा रानी ये प्रार्थना करती है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे, चाहे आप मेरा गार्ड आलिंगन करो या मुझे दुत्कार कर फेंक दो आप, या मुझे आप दुर्लक्ष कर दो, अदर्शनान। ये तीनों स्थिति देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो आलिंगन करेगा, जब किसी से द्वेष करता है, शत्रुता रखता है तो दुत्कारेगा, परंतु सबसे बेकार है निग्लेक्ट, दुर्लक्ष, दुर्लक्षता। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि हे कृष्ण, आप यदि इन तीनों में से कुछ भी करें मेरे साथ, आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। इसे कहते हैं श्री कृष्ण परायण होना। इस भौतिक संसार में जब कोई किसी के परायण होता है, अर्थात कोई किसी के शरणागत होता है, तो उसके पीछे कितने सारे शर्त रखे जाते हैं कि भाई हम आपकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे विघ्नों को हरते हैं, आप हमारे विघ्नों को हरते हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। यहां पर श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि आप चाहे विघ्न दो, आप चाहे वज्रपात करो या आप चाहे फूल का पात करो, आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। परंतु भौतिक संसार में लोगों की प्रार्थना जब किसी को परायण होते हैं तो क्या होती है? क्या हमें उससे मिलेगा? हम बचपन में गाया करते थे ये इसी सीजन में, अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो दे दे दे, यदि कोई बांझ है तो पुत्र मिले, और सीधा बोल रहे हैं माया दो, जैसे कि माया की कमी है। और श्रीमती राधा रानी, हालांकि वो सेवा स्वरूपिणी है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण परायणी है, परंतु वो कभी अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं सबसे बड़ी सेविका हूं। वो हर समय एक साधारण से साधारण, कोई तुच्छ से तुच्छ भी सेवक हो, पूरे अनर्थ से भरा हो, श्रीमती राधा रानी उसे आगे करती है। और अक्सर भौतिक संसार में क्या सुना जाता है कि सभी देवों में आप है सबसे बड़ा, बड़े देव, और आपके भक्तों में हमसे बड़ा कौन। देवा हो देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। कैसा लगती है भावना, मानो हम राधाष्टमी के दिन ये बोले कि सारे देवों में आपसे बड़ा कौन कृष्ण, और भक्तों में मुझसे बड़ा कौन। तो यहां पर विशेष रूप से देखिए, ये बहुत सही समय है राधा रानी का आविर्भाव दिवस जो हम मना रहे हैं, समझना कि वास्तविक परायणता या भक्ति किसे कहते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी वो जो श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, कि आप पिनष्टु भगवान, आप मुझे दुत्कार कर बाहर फेंक दीजिए, आलिंगन कीजिए, मुझे मर्माहत कर दीजिए अदर्शी होकर, परंतु फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। तो श्रीमती राधा रानी जोर जोर से बोल रही हैं कि सारी दुनिया लगी रहे अपने विघ्नों को हरने में, हम लगेंगे भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने में, चाहे वो कुछ भी करें हमारे साथ। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी और उनके जो अनुयायी हैं वो विघ्न चाहते हैं, वो बोलते हैं आप विघ्न दो। राधा रानी को सांत्वना देने के लिए तो उद्धव जी वृंदावन जाते हैं श्रीमती राधा रानी को सांत्वना देने के लिए, और वो देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो उनका भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो इतना गहरा है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं राधा रानी को कुछ शिक्षा दे। तो फिर भी वो परीक्षा लेना चाहते थे, देखना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी का भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना गहरा है। तो उद्धव जी ने श्रीमती राधा रानी से कहा, क्यों आप इतना विलाप कर रहे हो, आपको छोड़ चुके, आपको छोड़कर गए ना वो, तो भूल क्यों नहीं जाती, वो भूल गए तुम भी भूल जाओ। तो श्रीमती राधा रानी उद्धव जी से बहुत सुंदर पांच प्राणियों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि ये कुछ प्राणियों के जीवन में देखो उद्धव क्या पाते हो, ये पांच प्राणी, पतंगा, चातक पक्षी, हिरण, चकोर और मीन। पतंगा वो जो अग्नि में प्रवेश कर जाता है अग्नि से इतना प्रभावित होकर, वो कीड़ा। तो श्रीमती राधारानी उद्धव जी को पतंगा का उदाहरण देती है कि वो जो कीड़ा पतंगा वो अग्नि में प्रवेश कर अपने आप को जलाकर भस्म कर देता है, परंतु अन्य पतंगे वो कभी पीछे नहीं हटते फिर अग्नि में जाने से। वो अग्नि जो इन पतंगों को जलाकर भस्म करती है उसी अग्नि से वो पतंगे इतना प्रेम करते हैं। तो मैं कृष्ण से प्रेम करना कैसे छोड़ सकती हूं यदि एक साधारण सा पतंगा अग्नि से प्रेम करना नहीं छोड़ सकता, वो अग्नि जो उसको जलाती है। फिर श्रीमती राधारानी उदाहरण देती है एक चातक पक्षी का। चातक पक्षी केवल वर्षा का जल, वो भी स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल ग्रहण करता है, और कई बार वो बादल वर्षा के जल के बजाय वज्रपात करता है उस चातक के ऊपर, फिर भी वो चातक मरते मरते भी उस बादल की ओर देखते हुए बूंद की प्रतीक्षा में रहता है वर्षा के जल की। तो यदि एक साधारण सा पक्षी चातक अपना प्रेम बादलों से नहीं छोड़ सकता, तो मैं इन घनश्याम से अपना प्रेम कैसे छोड़ूं? फिर उदाहरण दिया हिरण का। हिरण को शिकारी मारता है पहले बांसुरी बजाकर, और वही हिरण उसी शिकारी के विषय में प्रार्थना करता है कि तुम मेरे चर्म को लो और वाद्य बनाओ इस चर्म से, मेरी इस चमड़ी से। तो ये हिरण इतना शुभचिंतक है उस शिकारी का, वो शिकारी जो इस हिरण को मारा है, तो क्या मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम छोड़ दूं? फिर उदाहरण चकोर का दिया। ये चकोर पक्षी चंद्रमा पर एक टक अपनी नजर बनाए रखता है, और कई बार चंद्रमा बादलों में छिप जाता है या अमावस्या की रात होती है, ये चकोर एक टक देखते देखते उसकी गर्दन अकड़ जाती है, परंतु फिर भी वो चकोर अपनी नजर चंद्रमा से हटाता नहीं। उसी चंद्रमा की वजह से उसकी गर्दन अकड़ जाती है, परंतु वो चकोर अपना प्रेम उस चंद्रमा के प्रति छोड़ता नहीं। तो क्या मैं भगवान श्री कृष्ण जो कि वृंदावन चंद्र हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति मैं अपना प्रेम कैसे छोड़ दूं? और ये अंतिम उदाहरण बहुत सुंदर है मछली का। मछली जल में निवास करती है, और वो जल के वजह से उस मछली का जीवन है, और मछुआरा जब जल वो मछली को पकड़ने जाता है तो जाल फेंकता है, और वो जाल करता क्या है, मछली को पकड़ लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो मछली जिस पानी के साथ अपने जीवन भर संग की, वो पानी मछली के विकट परिस्थिति में मछली को छोड़ देता है, और वो मछली बाहर आकर पानी से बाहर आकर तड़पती है फिर से उस पानी में जाने के लिए जिस पानी ने दगा दिया। मछली को दगा दिया उस पानी ने। तो राधा रानी कहती हैं कि यदि एक तुच्छ सी मछली जो दगा दिए हुए पानी का संग फिर से करना चाहती है, तो मैं भगवान श्री कृष्ण चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करें, मैं कैसे अपना प्रेम छोड़ दूं? इसे कहते हैं श्री कृष्ण परायण। कोई शर्त नहीं। इस भौतिक संसार में जब कोई किसी के परायण होता है तो सारे पहले कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, वो सब साइन करने पड़ते हैं। चाहे कोई कितना भी अपना प्रेम व्यक्त करे, उसमें हर समय वो टर्म्स और कंडीशन सामने आते हैं। जैसे इस भौतिक संसार के जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जो कहते हैं गाते हैं कि समुद्र से भी गहरा हमारा प्रेम, आकाश की ऊंचाई को फांदते हुए हमारा प्रेम। तो एक प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा, कितना प्रेम करते हो बताओ। तो उसने कहा, तुम कहो तो तारे तोड़ कर लाऊं और तारों का एक हार बनाऊं, तुम कहो तो तारों का हार बनाऊं जिसमें चंद्रमा को पेंडेंट रखूं, उसने कहा क्या मेरे लिए ताजमहल बना सकते हो, ताजमहल जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया, ताजमहल। पहले उसे लगा ताजमहल चाय, तो उसने फिर बताया कि शाहजहां ने जो मुमताज के लिए ताजमहल चाय नहीं ताजमहल बनाया। तो इसने कहा जरूर क्यों नहीं, शाहजहां की तरह मैं ताजमहल बनाऊंगा तुम्हारे लिए, मर के तो दिखाओ, मुमताज की तरह मरो पहले फिर ताजमहल बनेगा। तो ये यहां की परायणता है इस संसार की। परंतु यहां पर श्रीमती राधा रानी ये उदाहरणों से बता रही है कि शुद्ध कृष्ण परायण किसे कहते हैं। अब श्रीमती राधा रानी के कुछ विशेष नाम, हालांकि अनगिनत नाम है, परंतु कुछ विशेष नाम श्रीमती राधा रानी के, जो हमारी साधना में हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। वृषभानु दुलारी एक नाम है श्रीमती राधा रानी का, अर्थात जो वृषभानु की नंदिनी है। वृषभानु कौन है, भानु किसे कहते हैं, सूर्य को। तो वृषभानु वो सूर्य देव हैं। सूर्य देव ने इच्छा की थी कि मुझे गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में चाहिए। तो सूर्य देव की इच्छा पूरी करने के लिए श्रीमती राधा रानी, सूर्य देव जो कि वृषभानु के रूप में आए भौम वृंदावन में, तो उनकी नंदिनी बनी। तो यहां पर श्रीमती राधा रानी के जो कांति है, तप्त कांजन गौरांगी, ये जो गौर अंग है उनका, कांति उनकी जो है इतनी तेजस्वी, वो सूर्य देव से उन्हें प्राप्त हुई है। और उनकी कांति इतनी है कि कई बार श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के बगल में खड़ी होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण है वो श्याम वर्ण के ऊपर उनकी कांति आती रहती है। और कई बार भगवान श्री कृष्ण उनका जो घनश्याम स्वरूप है, जो सांवला स्वरूप है, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों में बिजली कड़क रही हो। बादल जो घने गहरे थोड़े काले बादल, उसमें जब बिजली कड़कती है तो बहुत सुंदर दिखती है ना। तो वृषभानु जिनको वो कांति मिली है सूर्य देव से, उनकी कांति जब भगवान श्री कृष्ण के कांति से संपर्क में आती है तो जैसे कि एक बादल में बिजली कड़क रही हो, कल्पना करो वो दृश्य। और एक इसमें एक सैद्धांतिक मुद्दा यह है कि हम सब जो इस भौतिक संसार में हैं, हम सब अपने पाप का पर्वत बड़ा कर रहे हैं। पाप करते हुए इतने किए हैं और करते हुए पाप का पर्वत बड़ा कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी की तुलना उस बिजली से की, उनकी कांति की तुलना। तो बिजली ही एक पर्वत को चूर चूर कर सकती है। एक पर्वत को कोई डायनामाइट या बम या आरडीएक्स फारडीएक्स कुछ नहीं कर सकता। एक पर्वत को यदि चूर चूर करना है तो केवल बिजली, वज्रपात उस पर्वत पे होता है, तभी जाकर वो पर्वत चूर चूर होता है। तो ये जो हमारे पाप का पर्वत है, यदि इसे चूर चूर करना है तो श्रीमती राधा रानी के केवल कांति पर ध्यान करें हम, जो बिजली स्वरूप उनकी जो कांति है, उनका जो तेज है, वो हमारे पाप रूपी पर्वत को चूर चूर करेगा। और भगवान श्री कृष्ण पर्वत चूर चूर हो गया, उसके पश्चात रामानंद राय बताओ सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में? रामानंद राय कहते हैं एक शुद्ध भक्त, एक करती हैं कीर्तिदा। इसलिए जन्म राधा रानी के राधाष्टमी उनके जन्मोत्सव पर हमें कीर्तिदा माता जी की प्रार्थना कर उनकी कृपा प्राप्त करनी है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है हमारे लिए। श्री राधा, इसके विषय में बताया गया है कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से, बाएं भाग से श्रीमती राधा रानी इनका प्राकट्य हुआ। और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही राधा रानी की सुंदरता को देखा तो भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। और गोलोक वृंदावन में रासमंडल, भगवान रासमंडल में बैठे हुए थे, तो रासमंडल के बगल में एक पर्वत शतश्रृंग, ये शतश्रृंग पर्वत भौम वृंदावन में श्री गोवर्धन के रूप में आए। गोलोक वृंदावन में शतश्रृंग। तो जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी ने तुरंत रास मंडल में वो भागने लगी, कुछ पुष्प को इकट्ठा, मालती पुष्प को इकट्ठा करने, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो रा का अर्थ है, ये राधा जो शब्द है इसमें रा का अर्थ है रासमंडल, और धा इसका अर्थ है धावना, भाग रही थी राधा रानी। किस लिए? सेवा हेतु। हम लोग सेवा से भागते हैं और राधा रानी कि ये जो नाम का अर्थ है जो सेवा के लिए भागे वो है श्री राधा। तो ये जो नाम है श्री राधा, इससे हम क्या सीखते हैं, कैसे हम सेवा के लिए भागते रहें। आराधिता अर्थात आराधना में जो लगी है। यहां पर यह समझ में आ रहा है कि श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण प्रेम है वो कोई तथाकथित कृष्ण प्रेम नहीं जो सहजीय लोग प्रस्तुत करते हैं। श्रीमती राधा रानी आराधना में लगी हैं, साधना में लगी हैं, और साधना के कारण श्रीमती राधा रानी को उस प्रकार का प्रेम जागृत हुआ है। इसलिए यदि हमें भी प्रामाणिक प्रेम जागृत करना है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो श्रीमती राधा रानी जो आराधना में लगी हैं उस प्रकार की आराधना में हमें लगना है। ये नहीं कि भाई मैं वृंदावन में जाऊंगा और वहां पर राधे राधे बोल वृंदावन में डोल और कृष्ण जादू की पिटारी खोल, इस प्रकार से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने हमें सारे नियम बताए, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री पुरुष गमन नहीं करना, 16 माला जप करना, एकादशी का पालन करना, ये सारे जो नियम, ये आराधना, इस साधना में जब हम लगते हैं तब जाकर वो कृष्ण प्रेम की पिटारी खुलती है। ये नहीं कि डोला यहां वहां और फिर बहुत भावनाएं मेरे हैं कृष्ण के प्रति, नहीं, आराधना साधना के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये इस नाम से श्रीमती की राधा रानी के इस नाम से हमें शिक्षा मिलती है। कृष्णमयी एक बहुत विशेष नाम है श्रीमती राधा रानी का, कृष्णमयी। हम लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो हैं, हम लोग क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्णमय या कृष्णमयी बनने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु राधा रानी का एक और स्वरूप है इस भौतिक संसार में, वो है दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी के विषय में कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, गुणमयी, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि ये जो दुर्गा देवी, सभी जो इसकी शरण में हैं, जो इसकी गिरफ्त में हैं, ये दुर्गा देवी कौन है, गुणमयी। कौन से गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और इसलिए इस भौतिक संसार में जो प्रकृति का भोग करने में लगा हुआ है वो भी हर समय गुणों में ही रचा पचा रहता है। तो यदि हमें उस जंजाल से बाहर निकलकर कृष्णमय बनना है, बनना है, तो यदि हमें कृष्णमय बनना है तो जो कृष्णमयी है जिसका हरेक कण रोम रोम केवल भगवान श्री कृष्ण का ही नाम उच्चारण करता रहता है, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्णमयी ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती राधा रानी का। मदन मोहन मोहिनी, इस भौतिक संसार में हम सब मदन, मदन से सब परिचित है ना, कामदेव, मदन और कामदेव के सब वशीभूत हैं। और ये मदन और कामदेव ये मोहित हैं मदन मोहन से, और मदन मोहन मोहित हैं मदन मोहन मोहिनी से। तो देखिए ये चैनल कहां जा रहा है। तो ये बहुत ही विशेष नाम है। तो यदि हमें इस भौतिक संसार की जो काम वासना इतनी प्रचुर मात्रा में व्याप्त है उसके चंगुल से मुक्त होना है तो हमें मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी की शरण ग्रहण करनी है। और ये जो राधा रानी का विशेष नाम है इसके संदर्भ में एक और विशेष नाम है जिसकी व्याख्या हम आज करना चाहेंगे, ये है राधानाथ। वृंदावन में कई ये जो नाम है ये नाम कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं, क्योंकि वृंदावन में सभी राधा रानी के भक्त हैं, तो वो कहते हैं राधा रानी का कोई नाथ नहीं हो सकता, कोई राधा रानी का नाथ नहीं हो सकता। अरे ये जो हैं सबके नाथ वो उनके चरणों में गिरे हुए रहते हैं मान मंदिर में बरसाना में, तो फिर राधा नाथ का अर्थ क्या है? क्योंकि राधा रानी के चरणों में हम सब के जो नाथ हैं वो गिरे हुए रहते हैं हर समय, तो राधा नाथ का एक और अर्थ है राधा जिनकी नाथ है, ये राधा नाथ का एक और अर्थ है श्रीमती राधा रानी जिनकी नाथ है। किनकी नाथ है? कृष्ण की। कैसे कैसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की नाथ हैं? जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का ये गुण है, भगवान परम शक्तिमान है, है ना, भगवान परम शक्तिमान है, परंतु एक लीला से हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने उनकी शक्ति कहां जाती है। ये लीला हुई काम्य वन में। काम्य वन आप लोग गए हैं? कौन गया है काम्य वन? अच्छा, काम्य वन पहले हम बताते हैं ब्रजमंडल में है। तो यदि आप लोग नहीं गए तो आप लोग आपकी लिस्ट में डाल दीजिए, बाकी जो लिस्ट हैं कुलू मनाली उट्टी ये सब काट के यदि काम्यवन डालें तो अच्छा रहेगा। तो काम्यवन में ये लीला हुई। काम्यवन में बहुत से बंदर गोपियों ने देखे, तो गोपियां सब बैठी हुई थी, ललिता विशाखा तुंग विद्या इंदुलेखा ये अन्य गोपियां मंजरियां ये सब बैठी हुई थी, और उन्होंने बंदरों को देखा। तो ललिता देवी ने विशाखा को बुलाया। अच्छा, इस बात पर ध्यान में आया कि आज विशाखा देवी का भी आविर्भाव दिवस है। उसी क्षण विशाखा देवी कौन है? ललिता और विशाखा ये अंतरंग सखियां हैं राधा रानी की, राइट लेफ्ट हैंड जिसे बोल सकते हैं, ललिता और विशाखा। तो आज विशाखा देवी का भी आविर्भाव दिवस है राधा रानी के आविर्भाव दिवस के साथ। तो ललिता देवी ने विशाखा देवी को बुलाया और अन्य गोपियों को बुलाया और कहा कि आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। तो सभी गोपियां और मंजरियां आ गई और ललिता देवी कथा सुनाने लगी कि त्रेता युग की बात है, रघुनाथ रामचंद्र जी अवतरित हुए और रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता का खोज करते हुए सेतु बांधा बंदरों की सहायता। ये बंदर जो देख रहे हो इस प्रकार के बंदर थे। तो पूरी रामायण संक्षिप्त रूप में सुना रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण वो भी बैठकर सुन रहे थे, सारी गोपियां बैठी हैं और कृष्ण पीछे बैठकर सुन रहे हैं क्या रामलीला। तो भगवान श्री कृष्ण ने ललिता से कहा, जैसे प्रवचन के बाद हम पूछते ना एनी क्वेश्चंस, तो भगवान ने हाथ ऊपर कर कहा मैं ही हूं वो रघुनाथ, मैं ही हूं वो राम। तो सभी गोपियां हंसने लगी ये इतनी जोर जोर से हंसने लगी सभी गोपियां, ये राम, ये बोलते राम है। तो कृष्ण बोले मतलब त्रेता युग में पढ़ो भागवत में, रामायण में पढ़ो भागवत में पढ़ो, मैं वही अवतारी कृष्ण राम के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुआ, मैंने ही वो सेतु बांधा, ये सारे बंदर है ना, ये सारे बंदरों को मैंने ही सेवा में लगाया, वो सीता मेरी अर्धांगनी, वो रावण का वध मैंने किया। बस बस बस, ललिता देवी बोली, वो स्टोरी हम जानते हैं, लेकिन ये मत बोलो कि तुम वो सब थे। तो ललिता देवी ने कहा, ठीक है तुम सिद्ध करके बताओ, ये जो इतना सा सरोवर है ना जहां पे हम बैठे हैं छोटा सा, इस पर एक सेतु बांधो, चलो छोटा सा पत्थरों से। कृष्ण ने कहा, ये अरे मैं समुद्र को लांग चुका हूं, सेतु बांधा, ये क्या छोटा सा ये सरोवर, लाओ लाओ पत्थर लाओ। तो ला, हम क्यों लाए पत्थर, ये है ना तुम्हारे बंदर, बोलो इनको। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा तो संशय करते हैं आप लोग। तो बंदरों से कहा, सारे वानर मैं आज्ञा दे रहा हूं, जितने सारे पत्थर हैं इस काम्य वन में वो सारे पत्थर लाओ और यहां पर हमको ब्रिज बनाना है, सेतु बनाना है। तो सारी गोपियां देखने लगी कि ये बंदर अभी काम करते हैं क्या कुछ। तो सारे बंदर भागे पत्थर लाने के लिए, सभी गोपियों ने देखा कुछ तो दम है, ये बंदर पत्थर लाने लगे। तो बंदर पत्थर लाए और भगवान श्री कृष्ण ने बंदरों से कहा, लिखो मेरा नाम लिखो पहले, थोड़ा साइन करो मेरा और फेंको। तो सभी नाम लिखे, कृष्ण फेंका, क्या हुआ गोविंदानंद रो बोलते डूब गए। सही में डूब गए, वो पत्थर डूब गए। सभी हंसने लगे, हे देखो हो गया पचका। तो वहां पर हुआ क्या कि बंदर लाए पत्थर, नाम भी लिखा, परंतु ललिता देवी ने कहा कि वो पत्थर यहां लाओ। और फिर ललिता देवी ने राधा ये नाम लिखा, और फिर जब वो पत्थर फेंका तो वो पत्थर तेरा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो कि अपनी रामलीला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो सेतु बांधा श्रीमती राधा रानी के नाम को लिख लिख कर, और उस सेतु पर वो चल भी पाए क्योंकि श्रीमती राधा रानी उस ओर खड़ी थी। तो इसलिए ललिता देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, रामलीला में भी सीता देवी उस ओर थी लंका में, इसलिए रामचंद्र जी वो सेतु बांध सके, इसलिए रामचंद्र जी उस सेतु पर चल भी सके, कोई डूबा नहीं। और यहां पर भी राधा रानी वहां खड़ी हैं, इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम आ रही है। तो वो जो परम शक्तिमान है श्रीमती राधा रानी के सामने उनकी शक्ति काम नहीं करती, इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम है राधा नाथ। वो राधा जो परम शक्तिमान की नाथ हैं, और भगवान को परम नियंता कहा गया है, कंट्रोलर, भगवान जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं। एक बार वृंदावन में नारद मुनि वीणा बजाते हुए आए, और इतनी मधुर वीणा नारद मुनि बजा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, मांगो कुछ वरदान। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं मैं फ्यूचर में कभी लूंगा, उसको आप इसमें रखो, पॉज बटन दबा के रखता हूं, ऑन होल्ड। तो भगवान श्री कृष्ण तो भूल गए, परंतु नारद मुनि वो रखे थे, वरदान मांगना है मुझे। तो फिर राधा रानी के साथ भगवान अपनी लीलाएं प्रारंभ किए, ब्रजमंडल में, गोवर्धन में, बरसाना में, यहां वहां। तो नारद मुनि रोज वहां की फेरी लगाते, राधा रानी से मिलते आके। तो कृष्ण ने देख लिया कि नारद मुनि बार बार आ रहे हैं, राधा रानी से मिल रहे हैं। तो एक दिन नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, इन नारद मुनि से ज्यादा मिलो मत। तो राधा रानी ने कहा, क्यों, वो इतना सुंदर वीणा बजाते हैं और आप ही के नाम का गुणगान करते रहते हैं, क्यों नहीं मिलो? नहीं, वो फूट डालने में बहुत माहिर हैं। तो थोड़ा दूर से, ज्यादा पास में से नहीं। तो नारद मुनि वो एक दिन पहुंचे जहां पर झूलन चल रहा, झूलन यात्रा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण और सभी सखी और गोपियां। तो झूलन यात्रा में तो राधा और कृष्ण, इनकी झूलन, और सभी ललिता विशाखा और अन्य गोपियां, वो सभी बड़ा झूला। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, सभी पहुंच गए, राधा रानी पहुंची नहीं। राधा रानी वो तैयार हो रही थी, होता है ना, लेट हो जाता है कभी, तो वो लेट हो गई। और यहां पर सभी भगवान श्री कृष्ण, ललिता, विशाखा, ये सब प्रतीक्षा में हैं। तो नारद मुनि पहुंच गए। तो नारद मुनि ने देखा, पूछा कि आज कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? झूलन यात्रा, ललिता देवी ने कहा। झूलन यात्रा, राधा गोविंद देव की झूलन यात्रा। तो नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तो झूलन यात्रा शुरू क्यों नहीं करते? भगवान कहे, अभी तक राधा रानी आई नहीं, तो राधा रानी बैठने वाली है ना मेरे साथ। तो नारद मुनि उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा, याद है आपने मुझे एक वरदान देने का बोला था? तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा चौकन्ना हुए, इस समय क्यों मांग रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण पूछे, क्या क्या चाहिए? मैं देखना चाहता हूं कि ललिता देवी के साथ तुम झूले पे कैसे लगते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी को आने के लिए तो समय है, 10-15 मिनट ललिता देवी के साथ झूले पे बैठ जाते। तो ललिता देवी को बुलाया, ललिता देवी ने कहा, नहीं नहीं, बीच में राधा रानी आ जाएगी, अरे वो थोड़ा 10-15 मिनट लेट होने ही वाला है उसका, बैठो थोड़ा, नारद मुनि का थोड़ा वरदान पूरा कर देते हैं, इतना कुछ खतरनाक मांगा नहीं। तो ललिता देवी को जबरदस्ती झूले पे भगवान ने बिठा दिया और झूला चालू हुआ और नारद मुनि गायब। वहां से नारद मुनि गायब और नारद मुनि गए और श्रीमती राधा रानी जहां पर मेकअप कर रही थी वहां पहुंचे। और जैसे श्रीमती राधा रानी ने नारद मुनि को देखा, आप यहां पे कैसे? तो नारद मुनि पूछते, ये सब श्रृंगार किसके लिए चल रहा है? ने आज झूलन का आयोजन किया गया है ललिता विशाखा इन सब ने मेरे लिए। झूलन का किसके लिए? आपके लिए। अरे वो बैठी है कृष्ण के साथ, वहां पे तो चालू हो गई झूलन यात्रा, खत्म भी होने वाली है, आपको ऐसे झूला रहे हैं। तो राधा रानी को विश्वास नहीं हुआ, आपने क्या कहा, ललिता और कृष्ण झूले पे बैठे हैं? हाँ, अभी मैंने आंखों से, चलो दिखाता हूं। तो वहां पर भगवान अब झूल रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं घड़ी को, टाइम बहुत हो गया, अभी तक आए नहीं राधा रानी, और देखा नारद मुनि गायब, अब तो दाल पूरी काली। तो राधा रानी ने दूर से देख लिया, तो राधा रानी गई मान लीला में, गुस्सा, राधा रानी गुस्सा हो गई। तो अब भगवान श्री कृष्ण छलांग लगाए, समझ में आ गया ये तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ढूंढते हुए निकुंज में पहुंचे और वहां पर राधा रानी रो रही हैं और क्रोध में, और भगवान श्री कृष्ण चरणों में गिरकर बिलख रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। और भगवान ने कहा, मैंने बोला था ये नारद मुनि से संग मत करना। तब फिर राधा रानी उनको याद आया कि हाँ बोला तो था मुझे, परंतु नारद मुनि ऐसा काम क्यों करेंगे। तो नारद मुनि वहां पर हाथ ऊपर करते हुए जय राधे बोलने लगे, मुझे ये मान लीला देखनी थी, मैंने देखी नहीं थी अभी तक, तो क्षमा करना मैं जो जो भी किया, लेकिन क्या है कि जो लेटेस्ट वर्जन आपकी लीला का मैंने देखा नहीं था, यह मान लीला बहुत सुनी थी लेकिन अब तक देखी नहीं थी, तो अभी मैंने देख ली, राधे 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 बोल के भाग गए वहां से। तो यहां पर हालांकि भगवान परम नियंता हैं, परंतु राधा रानी यदि मान लीला में चली जाती हैं, तो वो परम नियंता श्रीमती राधा रानी को मनाने के लिए उनके चरणों में गिर गिर कर याचना करते हैं। इसलिए कहा गया है, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए, आराधन के आगे आगे कान्हा भागे आए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधा हरि का प्यारा नाम है, श्री राधा श्याम प्यारा नाम है, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आराधन के आगे आगे कान्हा भागे आए, ये इनकी शक्ति है, नियंत्रात्मक शक्ति श्रीमती राधा रानी की, इसलिए वो नाथ हैं इनके, इसलिए उनको नाम है राधानाथ। परम ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए क्यों? क्योंकि ये ज्ञान लेने के लिए कि श्रीमती राधा रानी के मन में, उनके हृदय में इतना आनंद है कि मेरे पास उतना आनंद नहीं, मैं आनंद घन हूं, परंतु ये श्रीमती राधा रानी मुझसे ज्यादा खुश लगती हैं हर समय। तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे जीभ है और एक रसगुल्ला है, तो दोनों में भाग्यशाली कौन है? यदि आपको पूछा जाए कि आपको अगले जन्म में जीभ बनना है या रसगुल्ला, दिखने में देखो रसगुल्ला कितना अच्छा दिखता है, सफेद सफेद गोल गोल नरम नरम रस से भरा हुआ गुल्ला, और जीभ दिखने में कैसी लगती है? तो क्या बनना पसंद करेंगे आप, रसगुल्ला या जीभ? पक्का? तो भगवान श्री कृष्ण हालांकि रसो वैस है, वो रसगुल्ले के समान है, और श्रीमती राधा रानी वो रसगुल्ले के जो आस्वादन करती हैं वो जीभ के समान। तो चाहे रसगुल्ला कितना भी कीमती हो, बिना जीभ के किस काम का? तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये श्रीमती राधा रानी, मैं बन गया रसगुल्ला गलती से, परंतु आस्वादन तो ये कर रही है पूरे रसगुल्ले का, तो चैतन्य महाप्रभु हैं कौन? वो रसगुल्ला जो जीभ बनकर आए, वो है चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। एक और उदाहरण दिया गया है, एक गुलाब का पुष्प और नाक, इनमें से भाग्यशाली कौन है? उसमें कितनी भी सुगंध हो परंतु वो गुलाब अपने आप को सूंघ नहीं सकता, वो रसगुल्ला अपने आप की मिठास नहीं चख सकता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञान नहीं कि उनमें कितनी मधुरता है, उनमें कितना सुगंध है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को कहा गया है राधा नाथ, जो इन परम ज्ञाता की नाथ हैं, परम यशस्वी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को परम यशस्वी कहा गया है, परंतु श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा यशस्वी कैसे हैं? आध्यात्मिक संसार में तो श्रीमती राधा रानी हैं आदिशक्ति, और इस भौतिक संसार में श्रीमती राधा रानी दुर्गा देवी के रूप में, जैसे गुणमयी, वहां कृष्णमयी और यहां गुणमयी, तो यहां पर भी फेमस है और वहां पर भी फेमस है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो यश है वो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा है, कि यदि किसी को भौतिक इंद्रिय भोग भी करना है तो राधा रानी के स्वरूप की शरणागति करनी पड़ेगी, दुर्गा देवी, और यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना है तो भी श्रीमती राधा रानी की जो आदिशक्ति है, लादनी शक्ति, उसकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से वो जो परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण की नाथ हैं श्रीमती राधा रानी। परम सुंदर, भगवान को परम सुंदर ये व्याख्या की गई है। परंतु एक ब्रजमंडल में एक कथा हुई, एक जगह का नाम है हरोण्या ग्राम। यहां पर इस जगह एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा, मुझे तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। तो राधा रानी ने कहा, हार जाओगे? तो भगवान ने कहा, मैं और हार जाऊंगा तुमसे चौसर में, लगी शर्त। तो ललिता देवी, विशाखा देवी, ये सब गोपियां आ गई। तो राधा रानी ने सब गोपियों से कहा, शर्त लगा रहा है। तो अब शर्त क्या? कुछ ना कुछ तो शर्त की वस्तु रखनी पड़ेगी। तो ललिता देवी ने कहा, कृष्ण तुम्हारे पास क्या है जो तुम रखोगे? हारोगे तो जो तुम्हें देना पड़ेगा राधा रानी को। तो देखे तो अपनी बांसुरी निकाली है। तो राधा रानी हंसने लगी, ये लकड़ी का टुकड़ा, खोखला, वो भी अंदर से, ये तुम दांव पे लगा रहे हो। भगवान ने कहा कि इसमें इतनी शक्ति है, मैं बजाना शुरू करूं तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल होती है, ये कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं। तो ठीक है, जो कुछ है रखो। और राधा रानी ने क्या रखा? मणिहार, मणियों से बना हुआ अपना हार रखा, शर्त की वस्तु। और फिर चौसर का खेल शुरू हुआ। तो जैसे ही खेल शुरू हुआ, भगवान जीत रहे थे, भगवान जीत रहे थे, राधा रानी हार रही थी। तो राधा रानी ने किया क्या? तुरंत अपनी सुंदरता को बहुत बढ़ा दिया, उसका लेवल, सुंदरता का लेवल। ये देखिए, यहां पे किसी को सुंदरता का लेवल बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। पहले बदसूरती छिपानी पड़ती है, वो अलग अलग लेप लगा लगा के ब्यूटी पार्लर में। तो राधा रानी अचानक इतनी सुंदर हो गई, और राधा रानी ने खेलना बंद किया, केवल कृष्ण की तरफ निहारने लगी। तो कृष्ण अपना अगला दांव फेंक रहे थे, तो देखे राधा रानी की सुंदरता को, और रात भगवान श्री कृष्ण की सिट्टी पिट्टी गुल हुई फिर, और फिर वो चौसर क्या कुछ ध्यान में नहीं, वो कुछ भी हाथ से गिर रहा है, कुछ भी आ रहा है, और भगवान राधा रानी की सुंदरता देखते देखते हार गए। तो राधा रानी वो चौसर का खेल जीती कैसे? केवल अपनी सुंदरता को दिखाकर, मदन मोहन को मोहित कर। और भगवान इतने मोहित हो गए कि अब भगवान आगे कुछ खेल ही नहीं पाए। तो भगवान ने तुरंत अपनी बांसुरी छिपा ली, नहीं दूंगा ही, जान गए हार गए, नहीं दूंगा। तो राधा रानी ने पूछा, अरे भाई शर्त की वस्तु थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो भगवान ने कहा, क्योंकि पहले ही मेरी एक वस्तु चुरा ली है तुमने, मेरा मन, मेरा मन चुरा लिया है, और इसलिए ये अब मैं नहीं दूंगा, पहले मेरा मन दो और फिर ये। तो ललिता और विशाखा ये पूछे, कैसे सिद्ध करोगे कि राधा रानी ने तुम्हारा मन चुरा लिया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत किया, सबको शांत किया और कहे कि सुनो। तो जब सब कुछ शांत हो गया, कोई आवाज नहीं, तो राधा रानी के हृदय से कृष्ण 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 ये आवाज आ रही थी। देखो हम किन भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी हम शांत हो जाएं तो ठोरने की आवाज सुनेगी। पहले से ही 10 बज चुके हैं, क्षमा करना, आज थोड़ा राधा रानी के भाव में बह रहे हैं हम। आ रहे हैं, गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। अब यहां पर भगवान जो परम सुंदर राधा रानी की सुंदरता से मोहित होकर इस चौसर में हार गए, इसलिए उस जगह का नाम है हरण्य ग्राम, जहां पर हार गए भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी की सुंदरता के सामने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता नहीं चल पाई। और परम कृपालु, जो भक्त या जो भी जीव यदि रिजेक्ट हो जाता है कहीं से भी, परंतु श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सामने रखती है। जैसे कि नारद मुनि ये श्लोक कहे हैं, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। यहां पर आराधितो का अर्थ है राधा रानी, अर्थात राधा रानी की कृपा यदि किसी को नहीं मिली है तो उसकी जो भी तपस्या साधना है तथा किम, क्या फायदा उसका? और यदि राधा रानी की कृपा मिली है तो फिर तपस्या करने का भी क्या फायदा, क्या जरूरत है? कृपा मिली या न मिली, दोनों तरीके में, दोनों दृष्टिकोण से तपस्या या कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे तरफ देखेंगे भी नहीं। यदि राधा रानी ने कृपा कर दी तो भी भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, और यदि राधा रानी ने कृपा नहीं किए तब तो देखने नहीं वाले। तो ये दोनों दृष्टिकोण में भगवान श्री कृष्ण हमारे पे कृपा करेंगे यदि श्रीमती राधा रानी, हालांकि वो करुणा सिंधु हैं, परंतु वो करुणा सिंधु का एक बूंद भी हमें नहीं मिल सकता जब तक कि वो नल राधा रानी नहीं खोलती, उनकी कृपा। इसलिए श्रीमती राधा रानी परम कृपालु हैं, इसलिए वो नाथ हैं। तो ये व्याख्या है श्री राधा रानी का, ये जो एक नाम है राधानाथ। राधा कृष्ण की भिन्नता, राधा और कृष्ण की भिन्नता में अभिन्नता बताई गई है कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, वो अभिन्न है फिर भी भिन्न है। इसके सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि सूर्य एवं सूर्य किरण, पुष्प एवं पुष्प की गंध, शक्कर एवं मिठास, अग्नि एवं उष्णता, चेतना एवं आत्मा। ये बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे आचार्यों ने दिए हैं। कि इन उदाहरणों में हम क्या देखते हैं कि जैसे सूर्य और सूर्य के किरण को अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है परंतु भिन्न दोनों। जैसे कि पुष्प और पुष्प की गंध एक ही है, पुष्प बिना गंध के कोई काम का नहीं, शक्कर मिठास के बिना, अग्नि उष्णता के बिना और आत्मा बिना चेतना के। उसी प्रकार से राधा और कृष्ण ये दोनों की जो गूढ़ भिन्नता और अभिन्नता है ये इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि बिना श्रीमती राधा रानी के हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, और भगवान श्री कृष्ण यदि वो हमारे जीवन को पुण्यवान न बनाए तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें नहीं मिल पाएगी, ये इससे समझ में आता है। इसलिए अंततः ये जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रीमती राधा रानी के संदर्भ में हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान ये प्रसिद्ध श्लोक कहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं परंतु हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम का अंश है वो किसका है, वो राधा रानी का है। सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट द कृष्ण प्रेम इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ राधा रानी विद इन अस, इस प्रकार से समझा जाएगा। इसलिए केवल भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से कुछ नहीं होने वाला। यहां पर तो भगवान बोले कि मेरे अंश होने के बावजूद कर्षति, इस प्रकृति में कर्षण चल रहा है मेरा अंश होने के बावजूद। परंतु जब ये हम समझ लेंगे कि जो कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में वो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण प्रेम का एक अंश है, तब जाकर ये जो प्रकृति के अंदर जो कर्षण चल रहा है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। और इसलिए आज के दिन श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो एक प्रचंड महासागर के समान है, केवल उसका एक बूंद यदि हमें मिल जाए तो हम भी श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हुए श्री श्री राधा गोपीनाथ को प्रसन्न कर पाएंगे। यही एकमेव हमारी प्रार्थना श्रीमती राधा रानी से आज के दिन होनी चाहिए। और श्रीमती राधा रानी जो इतनी कृपालु हैं कि पहले से ही उन्होंने कृपा कर दी है कि आज हम सौभाग्यशाली जीव इनके बर्थडे पार्टी को अटेंड कर रहे हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि हम सब आज जो यहां पर राधाष्टमी मना रहे हैं, इस पूरी पृथ्वी पर हमसे भाग्यशाली और कोई नहीं, उनसे भाग्यशाली और कोई नहीं जो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बोलो श्रीमती राधा रानी की, श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। जय श्री राधे।